जरा कल्पना कीजिए कि किसी के हाथ में एक बहुत ही पुरानी तस्वीर है, मतलब कोई पेंटिंग नहीं, कोई काल्पनिक चित्र नहीं, बल्कि एक असली तस्वीर।
हाँ, और वो तस्वीर किसी इंसान या इमारत की नहीं है।
बिल्कुल, वो खुद इस ब्रह्मांड के बचपन की तस्वीर है। एक ऐसा दृश्य जो तब का है जब समय और अंतरिक्ष बस आकार ही ले रहे थे। मतलब क्या ये विचारी अपने आप में दिमाग को झकझोड़ देने वाला नहीं है?
ये सचमुच विज्ञान की सबसे बड़ी जीतों में से एक है।
तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का विषय बिल्कुल यही है। हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है ना, वो डॉक्टर पेरी फिलिप्स का 2022 की हरमन लेक्चर सीरीज का एक बेहद गहरा और दिलचस्प व्याख्यान है,
और इसका शीर्षक है बिग बैंग द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स भाग दो।
हाँ, तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे हम केवल भौतिकी के उन नियमों का उपयोग करके जो आज हमारे आसपास काम करते हैं, पूरे 14 अरब साल पीछे जा सकते हैं।
एकदम सही, हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे पृथ्वी जैसे एक छोटे से धूल के कण जितने बड़े ग्रह पर बैठकर हम ब्रह्मांड की शुरुआत के बचे हुए सुरागों को पढ़ सकते हैं।
तो आइए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। डॉक्टर फिलिप्स इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही तार्किक ढंग से सामने रखते हैं, है ना?
बिल्कुल। अगर हम उस पुरानी चर्चा को याद करें जहां ब्रह्मांड के विस्तार को एक फूलती हुई ब्रेड के रूप में देखा गया था,
वो किशमिश वाली ब्रेड की एनालॉजी।
हाँ, वही, जिसमें किशमिश एक दूसरे से दूर जा रही हैं, आकाश गंगाएं ब्रह्मांड के फैलने के साथ ठीक वैसे ही एक दूसरे से दूर जा रहे हैं।
ये तो हुई बाहर की बात,
लेकिन भौतिकी हमें मजबूर करती है ये सोचने पर कि जब वो ब्रह्मांड एकदम शुरुआती दौर में था, जब सब कुछ एक बेहद छोटी सी जगह में सिमटा हुआ था, तब उस भयंकर गर्मी और दबाव के बीच वास्तव में पक क्या रहा था।
और ये सवाल हमें ब्रह्मांड के उन पहले कुछ मिनटों में ले जाता है जो स्रोत के अनुसार कोई शांत जगह नहीं थी। मतलब बिग बैंग के तुरंत बाद की स्थिति इतनी चरम थी कि वहां आज के समय का कोई भी सामान्य परमाणु अपना वजूद ही नहीं बचा सकता था।
यहां हमें तापमान और ऊर्जा के बीच के सीधे संबंध को समझना होगा। उस समय ब्रह्मांड सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का एक उबलता हुआ गर्म सूप था,
जिसे वैज्ञानिक भाषा में प्लाज्मा कहा जाता है।
सही कहा। अत्यधिक गर्मी का सीधा सा मतलब है अत्यधिक गतिज ऊर्जा। प्रकाश के कण, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं, उनमें इतनी ज्यादा ऊर्जा थी कि अगर कोई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी तरह मिलकर एक परमाणु बनाने की कोशिश भी करते
तो वो टिक नहीं पाते।
बिल्कुल नहीं, ये तेज रफ्तार फोटोन तुरंत आकर उनसे टकराते और उस नवजात परमाणु को चकनाचूर कर देते।
ये तो कुछ वैसा ही है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक भयंकर तूफान की बीचों बीच ताश का महल बनाने की कोशिश कर रहा हो।
बहुत ही सटीक तुलना है।
जैसे ही वो व्यक्ति दो पत्ते साथ रखता है, हवा का एक तेज झोंका आता है और उसे तुरंत उड़ा ले जाता है। यहाँ पत्ते वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है और तूफान की हवा वो अत्यधिक ऊर्जावान प्रकाश के कण है।
एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। इस भयंकर गति के कारण कुछ भी स्थिर नहीं हो पा रहा था।
लेकिन यहाँ मुझे एक बुनियादी बात खटक रही है। मतलब हम जानते हैं कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और भौतिकी का एक बहुत ही सामान्य नियम है कि दो समान चार्ज हमेशा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, जैसे चुंबक के दो एक जैसे सिरे। तो इस भयंकर कॉस्मिक तूफान में जहां फोटोन हर चीज को तोड़ रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन एक दूसरे के इतने करीब कैसे आ पाए कि वे जुड़ सके?
ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है।
अच्छा।
हाँ, जिस अत्यधिक तापमान के कारण परमाणु नहीं बन पा रहे थे, वही तापमान इन प्रोटोनों को जोड़ने की इकलौती कुंजी भी था।
मैं समझी नहीं, गर्मी से वो जुड़ कैसे गए?
इसे ऐसे समझिए कि गर्मी के कारण कण इतनी भयंकर गति से एक दूसरे की तरफ भाग रहे थे कि वे एक दूसरे को दूर धकेलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल को पार कर गए।
ओ, मतलब उनकी गति इतनी तेज थी कि दूर धकेलने वाला बल उन्हें रोक ही नहीं पाया।
बिल्कुल, और जैसे ही वे एक दूसरे के बेहद करीब आए, प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल वहां मौजूद था। वो है मजबूत परमाणु बल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल से कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये केवल बहुत ही छोटी दूरी पर काम करता है। जैसे ही कण उस दूरी के भीतर आए, इस मजबूत बल ने उन्हें आपस में कसकर बांध दिया।
क्या बात है, यानी गति ने उन्हें उस सीमा तक धकेल दिया जहां प्रकृति का सबसे मजबूत गोंद काम करने लगा।
सही कहा।
और स्रोत सामग्री बताती है कि ये सब बिग बैंग के ठीक 100 सेकंड बाद शुरू हुआ, लेकिन ये हमेशा नहीं चला, है ना?
बिल्कुल नहीं, ये पूरी प्रक्रिया केवल अगले 3 मिनट तक चली।
सिर्फ 3 मिनट?
हाँ, क्योंकि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा था और जब कोई चीज फैलती है तो वो ठंडी होती है। तीन मिनट के बाद ब्रह्मांड इतना फैल गया और इतना ठंडा हो गया कि कणों की गति धीमी पड़ गई।
अच्छा, तो अब उनके पास वो रफ्तार नहीं थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल की दीवार को तोड़ सके।
एकदम सही, इसलिए नए कणों का जुड़ना वहीं रुक गया और इन्हीं शुरुआती तीन मिनटों में ब्रह्मांड के सबसे हल्के तत्व बने, मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और बहुत ही कम मात्रा में ड्यूटेरियम और लिथियम।
ये सोचना भी दिमाग को शून्य कर देता है कि ब्रह्मांड का सारा शुरुआती कच्चा माल महज पहले तीन मिनट में बनके तैयार हो गया था। अब ये तो बात हुई कि वे तत्व कैसे बने, लेकिन स्रोत सामग्री में एक बहुत ही मजेदार किस्सा है जो बताता है कि वैज्ञानिकों ने ये कैसे पता लगाया कि ये तत्व कितनी मात्रा में बने थे।
आप जॉर्ज गैमो और राल्फ अल्फर के उस मशहूर शोध की बात कर रही हैं?
हाँ, वही, वो विज्ञान के इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प पन्ना है।
तो गैमो और अल्फर इस बात का गणितीय मॉडल तैयार कर रहे थे कि शुरुआती ब्रह्मांड में हाइड्रोजन से हीलियम कैसे बना होगा। गैमो स्वभाव से बड़े मजाकिया इंसान थे।
हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में।
उनका नाम गैमो था, जो ग्रीक अक्षर गामा जैसा लगता है, और उनके छात्र का नाम अल्फर था, जो अल्फा जैसा लगता है। गैमो ने सोचा कि अगर वो एक किसी तरह इसमें मशहूर परमाणु वैज्ञानिक हंस बेथे का नाम जोड़ दें,
जो कि बीटा जैसा लगता है,
बिल्कुल, तो इस पेपर का नाम अल्फा बीटा गामा पेपर हो जाएगा।
और उन्होंने सच में ऐसा ही किया। उन्होंने हंस बेथे का नाम उस पेपर में सहलेखक के रूप में डाल दिया, जबकि बेथे ने शायद छपने से पहले वो पेपर पढ़ा तक नहीं था।
ये सच है।
मतलब ये तो वैसा ही है जैसे कोई लेखक अपनी किताब के कवर पर किसी मशहूर सुपरस्टार का नाम सिर्फ इसलिए लिख दे क्योंकि कवर देखने में अच्छा लगेगा।
और बेथे का सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा था, इसलिए उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। लेकिन इस मजाक से परे, इस पेपर का जो निष्कर्ष था वो भौतिकी की दुनिया में भूचाल लाने वाला था।
वो कैसे?
उन्होंने सिर्फ कागज और पेन के गणित से ये भविष्यवाणी की कि बिग बैंग के उन पहले तीन मिनटों में ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का लगभग 25% हिस्सा हीलियम में बदल गया होगा।
यहीं पर मुझे थोड़ा संशय होता है। ब्लैकबोर्ड पर गणित के कुछ समीकरण हल करके यह कह देना कि पूरे ब्रह्मांड का 25% हिस्सा हीलियम है, ये एक बहुत बड़ा दावा है।
दावा तो बड़ा था।
ये 25% का ही आंकड़ा कहाँ से आया, और हम 14 अरब साल बाद इसकी पुष्टि कैसे कर सकते हैं?
देखिए, 25% का आंकड़ा उस समय मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अनुपात से निकला था। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा भारी होता है, और जब वो स्वतंत्र होता है तो वो एक प्रोटॉन में बदल जाता है।
अच्छा।
जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हो रहा था, न्यूट्रॉन तेजी से प्रोटॉन में बदल रहे थे। जब तापमान उस सटीक बिंदु पर पहुंचा जहां संलयन या फ्यूजन हो सकता था, तब तक हर 7 प्रोटॉन पर केवल 1 न्यूट्रॉन बचा था।
ओके, तो अनुपात 7:1 हो गया था।
हाँ, और जब ये कण हीलियम बनाने के लिए जुड़े तो गणित के साधारण नियमों के अनुसार कुल द्रव्यमान का ठीक 25% हिस्सा हीलियम में लॉक हो गया।
समझ गए। लेकिन जहां तक इस भविष्यवाणी को साबित करने की बात है, उसे कैसे किया गया?
इसके लिए खगोलविदों ने हबल टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। खगोल विज्ञान का एक सीधा सा नियम है कि जितना दूर हम अंतरिक्ष में देखते हैं, हम समय में उतना ही पीछे जाते हैं,
क्योंकि प्रकाश को हम तक पहुंचने में समय लगता है।
बिल्कुल।
तो वैज्ञानिकों ने बहुत दूर मौजूद एकदम शुरुआती गैस के बादलों को देखा होगा, क्योंकि अगर हम पास देखेंगे तो हमें वो हीलियम मिलेगी जो हाल ही में तारों के अंदर बनी है, है ना?
एकदम सही पकड़ रही हैं आप। हमें तो असली बिना मिलावट वाली आदिम हीलियम चाहिए थी, जो सीधा बिग बैंग की भट्टी से निकली हो।
तो फिर क्या मिला उन्हें?
खगोलविदों ने ब्रह्मांड के उन सुदूर कोनों में देखा जहां अभी तारे ठीक से बने भी नहीं थे, और जब उन आदिम गैस के बादलों में हीलियम की मात्रा को नापा गया तो परिणाम हैरान करने वाले थे।
क्या वो 25% ही थी?
हाँ, वो मात्रा ठीक 25% ही निकली। ये कोई तुक्का नहीं था। ब्लैकबोर्ड पर की गई वो भविष्यवाणी और दूरबीन से किया गया वास्तविक अवलोकन पूरी तरह से एक दूसरे से मेल खा रहे थे।
ये साबित करता है कि भौतिकी के नियम 14 अरब साल पहले भी वैसे ही काम करते थे जैसे आज करते हैं। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है,
इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन अगर हम इस हीलियम को बिग बैंग की आग के बाद बची हुई राख मान लें, तो एक स्वाभाविक सा सवाल मेरे दिमाग में ये आता है कि उस शुरुआती आग की गर्मी का क्या हुआ। मतलब जब कोई बहुत बड़ी आग जलती है तो वो भयंकर गर्मी पैदा करती है, वो ऊर्जा अचानक से गायब तो नहीं हो सकती।
इसी सवाल ने गैमो अल्फर उनके एक अन्य साथी रॉबर्ट हर्मन को भी परेशान किया था। उन्होंने 1940 के दशक के अंत में यह तर्क दिया कि शुरुआती ब्रह्मांड में जो अत्यधिक ऊर्जावान प्रकाश के कण थे, वे आज भी पूरे ब्रह्मांड में मौजूद होने चाहिए,
क्योंकि वे कहीं जा नहीं सकते। ब्रह्मांड के बाहर कुछ है ही नहीं।
बिल्कुल।
लेकिन एक मिनट, अगर ब्रह्मांड प्रकाश से भरा हुआ था तो आज आसमान रात में एकदम काला क्यों दिखता है? उसे तो हर समय चमकना चाहिए।
यहीं पर ब्रह्मांड के विस्तार का असली प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे जैसे अंतरिक्ष खुद फैला, उस अंतरिक्ष के अंदर यात्रा कर रहे उन फोटोनों की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ भी खींचती चली गई।
अच्छा, मतलब वो स्ट्रेच हो गई।
हाँ, इसे ऐसे समझें कि एक बहुत ही कसी हुई स्प्रिंग है जिसे दोनों सिरों से पकड़कर खींचा जा रहा है। शुरुआती फोटोन बहुत छोटी और अत्यधिक ऊर्जावान वेवलेंथ वाले थे, लेकिन 14 अरब सालों तक अंतरिक्ष के लगातार फैलने ने उन प्रकाश तरंगों को इतना खींच दिया है कि अब उनकी वेवलेंथ लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी हो गई है।
और इतनी लंबी वेवलेंथ वाले प्रकाश को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसे ही हम माइक्रोवेव कहते हैं, है ना?
एकदम सही।
स्रोत में इसके लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए कि जंगल में कैंपफायर बुझ चुका है और कोई व्यक्ति उससे 100 फीट दूर खड़ा है।
हर्मन और अल्फर ने ठीक यही भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा कि अगर ये विकिरण वास्तव में मौजूद है तो ये पूरे ब्रह्मांड में हर दिशा में समान रूप से फैला होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, इसका एक बहुत ही विशिष्ट स्वरूप होना चाहिए, जिसे भौतिकी में प्लैंक ब्लैक बॉडी कर्व कहा जाता है।
ये कर्व क्या होता है?
ये एक विशेष प्रकार का ग्राफ है जो बताता है कि कोई भी गर्म वस्तु अपने तापमान के अनुसार किस तरह की ऊर्जा छोड़ती है। अगर ये बिग बैंग की बची हुई गर्मी है तो इसका स्पेक्ट्रम बिल्कुल इस प्लैंक कर्व के सांचे में फिट बैठना चाहिए।
ये भविष्यवाणी तो 1940 के दशक में ही कर दी गई थी, लेकिन फिर 1964 में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरी सैद्धांतिक खोज को एक बिल्कुल ही अलग और अजीबोगरीब मोड़ दे दिया।
आप बेल लैब्स वाली घटना की बात कर रही हैं?
जी हाँ, न्यू जर्सी की बेल लैब्स में दो रेडियो खगोल शास्त्री अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन एक बहुत बड़े हॉर्न आकार के एंटीना के साथ काम कर रहे थे।
वे असल में उपग्रहों से आने वाले सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा।
हाँ, एक रहस्यमयी शोर, एक लगातार आने वाली हिस की आवाज जो उनके रिसीवर में हर दिशा से आ रही थी।
और चाहे वे एंटीना को दिन में इस्तेमाल करें या रात में, उसे आकाश के किसी भी हिस्से की ओर घुमा लें, वो शोर कम ही नहीं हो रहा था। उन्होंने हर संभावित कारण को खारिज करने की ठानी।
उन्होंने आसपास के शहरों के रडार को चेक किया, रेडियो स्टेशन की जांच की, लेकिन शोर बना रहा।
और फिर उन्होंने एंटीना के अंदर झांका और पाया कि वहां कुछ कबूतरों ने अपना घोंसला बना लिया था।
अग।
और उन कबूतरों ने पूरे एंटीना को एक सफेद पदार्थ से गंदा कर दिया था। मतलब वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में इसे बड़ी ही शालीनता से सफेद डाय इलेक्ट्रिक सामग्री के लिखा, लेकिन असल में वो कबूतर की बीट थी।
पेंजियास और विल्सन को लगा कि शायद इस गंदगी की वजह से सिग्नल में खराबी आ रही है। उन्होंने उन कबूतरों को पकड़ा, पिंजरे में डाला और बहुत दूर छोड़ा है।
लेकिन वो कबूतर वापस आ गए।
हाँ, तो अंततः अपने प्रयोग को बचाने के लिए उन्हें उन कबूतरों को भगाने के लिए सख्त कदम उठाने पड़े और पूरे एंटीना को रगड़ रगड़ कर साफ करना पड़ा।
लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि एंटीना को पूरी तरह साफ करने के बाद भी वो शोर खत्म नहीं हुआ। सोचिए, वे जिसे पक्षियों की गंदगी से पैदा हुई खराबी समझ रहे थे, वो असल में क्या था?
जल्दी उन्हें पता चला कि वे जिस शोर से परेशान थे वो असल में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन था, या जिसे हम CMBR कहते हैं।
गैमो और उनकी टीम ने सालों पहले जिस चीज की भविष्यवाणी की थी, पेंजियास और विल्सन ने अनजाने में उसे खोज निकाला था।
बिल्कुल, उन्होंने जो मापा उसके अनुसार ब्रह्मांड के उस बचे हुए विकिरण का तापमान 0 से लगभग 270 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी लगभग 3.7 केल्विन था।
मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है।
क्या बात है?
हम कह रहे हैं कि ये प्रकाश बिग बैंग की बची हुई गर्मी है, लेकिन ये तस्वीर बिग बैंग के ठीक समय की नहीं है, बल्कि उसके 3 लाख साल बाद की है। ये प्रकाश इतने सालों तक कहाँ छिपा था? हम सीधे उस पहले सेकंड को क्यों नहीं देख सकते?
इस रहस्य को समझने के लिए हमें उस समय के ब्रह्मांड के माहौल को समझना होगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति घने कोहरे वाली सुबह में गाड़ी चला रहा है और वो अपनी हेडलाइट्स ऑन करता है, तो रोशनी आगे जाने के बजाय क्या होता है, वो कोहरे के पानी के कणों से टकराकर चारों तरफ बिखर जाती है और सामने एक सफेद दीवार सी बन जाती है, व्यक्ति दूर तो कुछ नहीं लिख पाता।
हाँ, रोशनी सीधे रास्ते पर नहीं चल पाती, वो बस बिखरती रहती है।
बिल्कुल, शुरुआती ब्रह्मांड के साथ ठीक ऐसा ही हो रहा था। बिग बैंग के बाद पहले 3 लाख सालों तक ब्रह्मांड में आजाद इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। ये इलेक्ट्रॉन उस कोहरे की तरह काम कर रहे थे।
अच्छा,
भौतिकी में इसे थॉमसन स्कैटरिंग कहा जाता है। जैसे ही कोई प्रकाश का कण सीधा आगे बढ़ने की कोशिश करता, वो इन आजाद इलेक्ट्रॉनों के जाल में किसी पिनबॉल मशीन की तरह टकराकर अपनी दिशा बदल लेता।
इसलिए ब्रह्मांड पूरी तरह से अपारदर्शी था, प्रकाश आगे बढ़ ही नहीं सकता था।
सही कहा।
लेकिन 300,000 साल बाद ऐसा क्या बदला कि ये कोहरा अचानक छंट गया?
तापमान। 300,000 साल बाद ब्रह्मांड फैलकर इतना ठंडा हो गया कि प्रोटॉन की गति धीमी हो गई और वे उन आजाद इलेक्ट्रॉनों को पकड़ने में सक्षम हो गए।
ओहो,
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जुड़ गए और पहला स्थिर परमाणु बना, हाइड्रोजन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के अंदर कैद हुए, ब्रह्मांड का वो कोहरा अचानक से गायब हो गया।
ब्रह्मांड एक ही पल में पारदर्शी हो गया और प्रकाश पहली बार बिना किसी रुकावट के अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए आजाद हो गया।
एकदम सही।
कॉस्मिक धुंध पहली बार छंटी थी और बाद में 1980 के दशक में जब सैटेलाइट के जरिए से मापा गया तो इसका तापमान बिल्कुल सटीक 2.75 केल्विन निकला,
जो उस प्लैंक कर्व पर एकदम सटीक बैठता था।
ये तो वाकई विज्ञान की एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन चलिए अब हम हल्के तत्वों और इस शुरुआती प्रकाश से थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
ठीक है।
हमने देखा कि बिग बैंग ने केवल हाइड्रोजन और हीलियम बनाए। यहाँ मुझे हिंडनबर्ग एयरशिप दुर्घटना याद आ रही है,
जिसमें आग लग गई थी।
हाँ, उसमें हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल हुआ था जो बहुत ज्वलनशील होती है और वो सुरक्षित नहीं था, जबकि हीलियम सुरक्षित होती है। तो खैर, अगर बिग बैंग से सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम बने तो हम इंसानों का शरीर ना तो सिर्फ हाइड्रोजन से बना है और ना ही हीलियम से।
जाहिर सी बात है,
हमारे शरीर में कार्बन है, हमारी हड्डियों में कैल्शियम है, हमारे खून में लोहा है। अगर बिग बैंग की भट्टी केवल 3 मिनट चली तो ये भारी तत्व कहाँ से आए?
ये सवाल हमें ब्रह्मांड के दूसरे सबसे बड़े कारखानों की ओर ले जाता है, और वे कारखाने हैं तारे।
तारे?
हाँ, ब्रह्मांड के बाकी सारे भारी तत्व तारों के बिल्कुल बीचों बीच यानी उनके कोर में अत्यधिक दबाव और गर्मी के कारण बने हैं। तारों के अंदर की ये प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प है।
वो कैसे?
एक तारा मूल रूप से 2 ताकतों के बीच एक भयानक रसाकशी है। एक तरफ है गुरुत्वाकर्षण, जो तारे के पूरे वजन को सिकुड़कर केंद्र की ओर धकेलना चाहता है। दूसरी तरफ है तारे के अंदर हो रहे संलयन या फ्यूजन से पैदा होने वाली गर्मी, जो उस वजन को बाहर की तरफ धकेलती है।
तो हमारा सूरज अभी इसी संतुलन में है जो हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है?
बिल्कुल।
लेकिन जब तारे का सारा हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो जाएगा तब क्या होगा?
हाँ, तब तो गुरुत्वाकर्षण जीत जाएगा। हाँ, जब ईंधन खत्म होता है तो बाहर धकेलने वाली ताकत कम हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण तारे को सिकुड़ने लगता है। जब वो सिकुड़ता है तो उसके केंद्र का तापमान करोड़ों डिग्री तक पहुंच जाता है। इतनी भयंकर गर्मी में अब बची हुई हीलियम खुद आपस में जुड़ने लगती है और कार्बन बनाती है। फिर हीलियम खत्म होती है, तारा और सिकुड़ता है, तापमान और बढ़ता है, और फिर कार्बन से ऑक्सीजन, सिलिकॉन, और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि लोहा नहीं बन जाता।
लोहा? लेकिन लोहे पर आकर ये प्रक्रिया क्यों रुक जाती है?
क्योंकि लोहे को आपस में जोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है वो उससे ज्यादा ऊर्जा सोख लेता है। लोहे से ऊर्जा बाहर नहीं निकलती।
अच्छा।
जैसे ही तारे के केंद्र में लोहा बनता है, बाहर धकेलने वाली ताकत अचानक शून्य हो जाती है। अब तारे का पूरा गुरुत्वाकर्षण एक साथ अंदर की ओर गिरता है। तारा 1 सेकंड के भी हिस्से में अपने ही केंद्र पर ढह जाता है और फिर एक भयानक विस्फोट होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं।
और ये विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि ये तारे के अंदर बने उन सभी भारी तत्वों, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहे को ब्रह्मांड के विशाल अंतरिक्ष में दूर दूर तक फैला देता है।
हाँ, इन्हीं विस्फोटों के मलबे से बाद में गैस के नए बादल बने, जिनसे नए ग्रह बने, हमारी पृथ्वी बनी, और अंततः उसी धूल से हम बने।
इसीलिए स्रोत सामग्री में डॉक्टर फिलिप्स बहुत ही काव्यात्मक ढंग से कहते हैं कि हमें तारों को गले लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का हर एक कण किसी न किसी प्राचीन तारे के गर्म दिल में गढ़ा गया था।
हम तकनीकी रूप से तारों की धूल हैं।
ये विचार बहुत ही गहरा है, लेकिन इन सबके बीच उस नाम की विडंबना पर बात करना भी जरूरी है। हम इस पूरी घटना को बिग बैंग कहते हैं, लेकिन इस नाम के पीछे की सच्चाई बहुत ही हैरान करने वाली है।
हाँ, ये नाम इस सिद्धांत को मानने वालों ने नहीं दिया था।
बिल्कुल, ये नाम इसका विरोध करने वाले एक खगोलशास्त्री फ्रेड हॉयल ने दिया था। उन्होंने एक रेडियो शो में इसका मजाक उड़ाने के लिए कहा था कि ये विचार बेतुका है कि सब कुछ बस एक बिग बैंग से शुरू हो गया।
और विडंबना देखिए कि लोगों के इनाम इतना आसान और आकर्षक लगा कि ये हमेशा के लिए इस सिद्धांत के साथ जुड़ गया, जबकि वैज्ञानिक रूप से ये नाम पूरी तरह भ्रामक है।
भ्रामक इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष में ध्वनि के यात्रा करने के लिए कोई माध्यम ही नहीं होता, कोई हवा नहीं है, तो तकनीकी रूप से वहां कोई बैंग या आवाज थी ही नहीं। ये पूरी तरह से एक खामोश विस्तार था।
बिल्कुल,
ये तथ्य अपने आप में हॉलीवुड की उन सभी फिल्मों को गलत साबित कर देता है जिनमें अंतरिक्ष में बड़े बड़े धमाकों की आवाजें आती हैं, जैसे स्टार ट्रेक में।
विज्ञान की वास्तविकता अक्सर हमारी कल्पनाओं से ज्यादा शांत लेकिन कहीं ज्यादा जटिल होती है।
एकदम सही। इस पूरी चर्चा में एक आखिरी आंकड़ा है जो स्रोत सामग्री में दिया गया है और वो मुझे बहुत छोटा महसूस कराता है।
आप किस आंकड़े की बात कर रही हैं?
हमने बिग बैंग की बात की, तारों की बात की, भारी तत्वों की बात की, लेकिन ये सब कुछ जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसे वैज्ञानिक बैरियोनिक मैटर कहते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 4.5% है।
ये आधुनिक खगोल विज्ञान का सबसे विनम्र करने वाला सच है। बाकी का 20% हिस्सा डार्क मैटर है, जिसका गुरुत्वाकर्षण हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। और सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 73% डार्क एनर्जी है, जो ब्रह्मांड को और भी तेजी से फैला रही है। हम इन दोनों के बारे में बहुत कम जानते हैं।
तो कुल मिलाकर हम इस ब्रह्मांड के केवल 4.5% हिस्से का एक बहुत ही छोटा सा भाग हैं।
छोटे जरूर हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड को समझने की हमारी क्षमता हमें बहुत विशेष बनाती है। डॉक्टर फिलिप्स अपने व्याख्यान में नासा के एक पूर्व प्रमुख रॉबर्ट जेस्ट्रो का जिक्र करते हैं।
हाँ, वो जो खुद को अज्ञेयवादी मानते थे।
बिल्कुल, जेस्ट्रो किसी धार्मिक विचारधारा को नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि ये देखना दिलचस्प है कि कैसे खगोल विज्ञान के वैज्ञानिक तथ्य और जेनेसिस जैसी प्राचीन किताबों के विचार एक ही बिंदु की ओर इशारा करते हैं। दोनों मानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक विशिष्ट क्षण में प्रकाश और ऊर्जा के अचानक विस्तार के साथ हुई थी। ये कोई धार्मिक दावा नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि जब इंसान ब्रह्मांड के सबसे गहरे सवालों के जवाब खोजता है तो विज्ञान और दर्शन अक्सर एक ही चौराहे पर आकर मिलते हैं।
ये एक बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो बिग बैंग थ्योरी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। स्रोत सामग्री के अनुसार ये मुख्य रूप से 3 बहुत ही मजबूत स्तंभों पर टिकी है।
वो 3 स्तंभ हैं ब्रह्मांड का लगातार होता विस्तार, हल्के तत्वों की वो सटीक मात्रा जो गणित और अवलोकन दोनों में मेल खाती है, और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन,
यानी वो शुरुआती गर्मी जो आज भी मौजूद है। स्रोत के शब्दों में, ये 3 धागों से बनी एक ऐसी रस्सी है जिसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता।
एक बहुत ही सटीक सारांश। ये भौतिकी और गणित के सुरागों का एक ऐसा जाल है जो हमें 14 अरब साल पीछे की तस्वीर साफ साफ दिखाता है।
लेकिन जाते जाते मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेचैन करने वाला विचार आ रहा है।
वो क्या?
आज हमने विस्तार से बात की कि कैसे प्रकाश 300,000 साल तक उस इलेक्ट्रॉन वाली कॉस्मिक धुन में फंसा रहा और इसीलिए हम दूरबीन से उसके पीछे नहीं देख सकते। लेकिन सोचिए, प्रकाश ही ब्रह्मांड को देखने का इकलौता तरीका तो नहीं है, है ना?
आप गुरुत्वाकर्षण तरंगों की बात कर रही हैं।
हाँ, गुरुत्वाकर्षण तरंगे या न्यूट्रिनो जैसे कणों पर उस धुंध का कोई असर नहीं होता। वे किसी भी चीज के आर पार जा सकते हैं। क्या होगा अगर भविष्य में हमारी तकनीक इतनी उन्नत हो जाए कि हम न्यूट्रिनो को उसी तरह पकड़ सके जैसे आज हम प्रकाश को पकड़ते हैं?
ये तो सच में।
क्या तब हम उस 3,000 साल की दीवार को तोड़कर सीधे बिग बैंग पे पहले 3 मिनट नहीं बल्कि पहले 1 सेकंड के ठीक अंदर झांक पाएंगे? वो नजारा कैसा होगा, ब्रह्मांड के एकदम पहले पल का साक्षात दर्शन। ये सोचने भर से एक अजीब सा रोमांच महसूस होता है।
ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य के किसी भी वैज्ञानिक की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। संभावनाएं सच में अनंत हैं।
और इसी अनंत संभावना और रोमांचक विचार के साथ हम अपनी आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ब्रह्मांड अपने आप में रहस्यों का एक महासागर है और हमारी समझ की नाव अभी बस किनारे से कुछ ही दूर निकली है। आसमान की तरफ देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और ज्ञान की इस खोज में हमेशा उत्सुक बने रहिए।